दिन भर 28 मई दिन रविवार, मैं हूं वात्सल राय। इराक के मुसल में आईएस के खिलाफ सेना का अभियान जारी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक खाना पानी और दवाओं के लिए तरसे आम लोग।
We know that the next part of the military assault on Western Mosul.
भारत प्रशासित कश्मीर में अलगाववादियों का बंद, कई इलाकों में कर्फ्यू जारी। CBSE की 12वीं की परीक्षा में 82% छात्र हुए पास, सबसे ज्यादा अंक नोएडा की रक्षा ने हासिल किए।
मैं बहुत खुश हूँ, बट मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, शॉक में हूँ।
और संग संग गुनगुनाओगे मैं आज बात बॉलीवुड के पंचमदा यानी RD बर्मन की। लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार, संदीप सोनी से। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि मूसल में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के साथ इराकी सेना की लड़ाई जैसे जैसे भीषण होती जा रही है, वहां फंसे आम लोगों के लिए जान का खतरा बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि संघर्ष वाले क्षेत्र में फंसे आम लोग न केवल खाना पानी दवा बिजली की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं, बल्कि भागने की कोशिश करने पर चरमपंथियों की गोलियों का निशाना भी बन रहे हैं। कुछ खबरें ऐसी भी मिल रही हैं जिनमें कहा गया है कि बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी देश सऊदी अरब पर जबरदस्त जुबानी हमला किया है। माह रमजान की शुरुआत पर एक सभा को संबोधित करते हुए खामेनेई ने कहा कि अमरीका सऊदी अरब का इस्तेमाल गाय की तरह कर रहा है। ये मूर्ख समझते हैं कि इस्लाम के दुश्मनों को दौलत लुटाकर दोस्त बनाया जा सकता है, लेकिन ये कोई दोस्ती नहीं, ये तो गाय की तरह है। वो पहले दूध निकालेंगे और जब दूध निकलना बंद हो जाएगा, गाय को बूचड़ खाने में काट देंगे। इस्लामी दुनिया में आज यही हालत है। देखो उन्होंने यमन और बहरीन के लोगों के साथ कैसा सलूक किया। ये थे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के शब्द। हाल ही में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब का दौरा किया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच हथियारों का सौदा हुआ, जिसके तहत सऊदी अरब अमरीका से 350 अरब डॉलर के हथियार खरीदेगा। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। फिलीपींस के मरावी शहर में इस्लामिक चरमपंथियों के साथ सैनिकों की मुठभेड़ के दौरान कम से कम 19 आम लोग मारे गए हैं। सेना शहर से चरमपंथियों को खदेड़ने की कोशिश कर रही है। जिन लोगों के शव मिले हैं उनके हाथ बंधे हुए थे और उन्हें गोली सिर में मारी गई थी। लड़ाई की वजह से मरावी में रहने वाले अधिकतर लोग शहर छोड़कर भाग गए हैं और उन्होंने एक द्वीप पर अस्थायी शिविरों में पनाह ली है। लेकिन फिर भी माना जाता है कि लगभग 2000 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, क्योंकि गली गली में चरमपंथी और सैनिकों के बीच मुठभेड़ हो रही है। ब्रिटेन में ऐसे लोगों की वापसी पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया जा रहा है जिन पर चरमपंथी होने का संदेह है। ब्रिटेन की गृह मंत्री एम्बर रड ने BBC को बताया कि ऐसे तमाम संदिग्ध लोगों को ब्रिटेन लौटने पर सीमा पर ही अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होगी, वरना उन्हें सजा भुगतनी होगी। इस सूची में कितने नाम हैं, ये पूछे जाने पर ब्रिटेन की गृह मंत्री ने कहा, मैं आपको सटीक संख्या नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि हमने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये थी ब्रिटेन के गृहमंत्री एम्बर रड के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। भारतीय सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना घृणित युद्ध का सामना कर रही है, जिसे नए तरीके से लड़ने की जरूरत है। समाचार एजेंसी PTI को दिए एक साक्षात्कार में जनरल विपिन रावत ने सेना के एक युवा अधिकारी द्वारा कश्मीरी व्यक्ति को मानव ढाल बनाने पर हुई आलोचनाओं को खारिज कर दिया। जनरल रावत ने कहा कि मेजर गोगोई को सम्मानित करने का मुख्य उद्देश्य युवा अधिकारियों का मनोबल बढ़ाना था, जो बहुत मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हैं। बांग्लादेश में राजधानी ढाका स्थित सुप्रीम कोर्ट परिसर में न्याय की प्रतीक प्राचीन यूनान की देवी की मूर्ति को दोबारा स्थापित किया गया है। लगभग 2 महीने पहले कट्टरपंथियों के दबाव में इस मूर्ति को हटा दिया गया था। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर आप सुन रहे हैं रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी लाइव। जंग किसी के लिए जुनून है तो किसी के लिए फर्ज, लेकिन बहुत से लोगों के लिए बम बंदूक और गोलियों के जरिए छेड़े जाने वाला संघर्ष तकलीफ की एक ऐसी कहानी है जिसे बयान करना भी आसान नहीं। दिन भर में आज सबसे पहले बात एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। इराक के मूसल में सरकारी सेना ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ निर्णायक और आक्रामक अभियान छेड़ा हुआ है। इराकी सेना अहम बढ़त हासिल करने का दावा कर रही है, लेकिन आम लोगों को इस संघर्ष की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र का दावा है कि मूसल में आम लोगों पर गंभीर खतरा है। पूरा ब्यौरा बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता मोहनलाल शर्मा।
पश्चिमी मूसल से इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ती इराकी सेना। रिपोर्टों के मुताबिक मूसल के पुराने शहर पर अब भी चरमपंथियों का कब्जा है। सेना ने यहां अधिकार हासिल करने के लिए आक्रामक अभियान छेड़ा हुआ है। उधर संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस अभियान के दौरान आम लोगों पर खतरा बढ़ गया है। इस्लामिक स्टेट के लड़ाके उन्हें सीधे तौर पर निशाना बना रहे हैं और वो तमाम दूसरी दिक्कतों से भी जूझ रहे हैं। इराक में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार राहत कोऑर्डिनेटर लीसे ग्रैंड ने बीबीसी से कहा,
हम जानते हैं कि पश्चिमी मूसल में सेना का अगला अभियान सबसे जोरदार होगा। हम ये भी जानते हैं कि आम लोग सबसे ज्यादा खतरे में होंगे। इस्लामिक स्टेट वहां से बच निकलने की कोशिश कर रहे परिवारों को निशाना बना रहा है। हम जानते हैं कि उनके पास भोजन और दवाएं सीमित मात्रा में हैं। वो पानी और बिजली की कमी से भी जूझ रहे हैं। जो आम लोग वहां फंसे हुए हैं वो गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं।
ये थे लीसे ग्रैंड के शब्द। मूसल पर अधिकार हासिल करने के लिए सेना ने अपने अभियान की शुरुआत पिछले साल अक्टूबर में की थी। इस अभियान में इराकी सेना को अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन सेना के लड़ाकू विमानों से भी मदद मिल रही है। सरकार ने जनवरी में पूर्वी मूसल पर अधिकार हासिल करने का ऐलान किया था, लेकिन पश्चिमी मूसल पर अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष जारी है। इस महीने की शुरुआत में गठबंधन सेना के अधिकारियों ने अनुमान जताया था कि मूसल में 1,000 से कम चरमपंथी हैं। अक्टूबर में उनकी संख्या 5,000 से 6,000 के बीच बताई गई थी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक संघर्ष में कई लोग विस्थापित भी हुए हैं। लीसे ग्रैंड कहती हैं,
संयुक्त राष्ट्र और सहयोगी स्वास्थ्य सेवा संगठनों ने 12,000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल भेजा है। इनमें से कई लोगों को गोली मारी गई है, कई लोगों की पीठ पर गोली लगी है।
ये थे लीसे ग्रैंड के शब्द। इराकी अधिकारियों के मुताबिक मूसल में संघर्ष की वजह से 5,80,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। इनमें से 4,19,000 पश्चिमी मूसल से हैं। सेना ने पश्चिमी मूसल में फंसे लोगों से बाहर आने की अपील की है, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक उनकी दिक्कत ये है कि बाहर निकलने की कोशिश करने वालों को इस्लामिक स्टेट के लड़ाके निशाना बना रहे हैं।
मूसल में मुश्किल में आम लोग, रिपोर्ट सुना रहे थे मोहनलाल शर्मा।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब रुख भारत का। भारत प्रशासित कश्मीर में तनाव की स्थिति है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल कमांडर सबजार अहमद बट की मौत के बाद आज से अलगाववादियों ने 2 दिन का बंद बुलाया है। पुलिस के मुताबिक बंद के दौरान घाटी में 6 जगहों पर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने श्रीनगर के 8 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया हुआ है। वहीं कश्मीर विश्वविद्यालय के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को होने वाली परीक्षाएं टाल दी गई हैं। मैंने अब से थोड़ी देर पहले स्थानीय पत्रकार माजिद जहांगीर से बात की और ताज़ा स्थिति के बारे में पूछा।
आज कश्मीर घाटी में प्रदर्शनों को रोकने के लिए, क्योंकि जो एक अप्रहेंशन था सरकार को कि आज बड़े पैमाने पर जो है प्रदर्शन हो सकते हैं, जो हिजब के कल कमांडर मारे गए सबजार अहमद भट्ट, तो उसको देखते हुए प्रशासन ने पूरी घाटी में जगह जगह पे बहुत ही भारी संख्या में सुरक्षा बल और पुलिस के जवान तैनात किए थे ताकि प्रदर्शनों को रोका जा सके। और इस बीच श्रीनगर के डाउनटाउन के 8 इलाकों में वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया था। अनंतनाग, पुलवामा, शुपियां, तो वहां भी कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। त्राल में आज सुबह 10 बजे जो है सबजार अहमद भट्ट को दफनाया गया, और जो खबरें वहां से हमें मिली कि हजारों में लोग वहां पे रेस्ट्रिक्शंस तोड़ के जो एडजेसेंट जो नजदीकी इलाके हैं वहां पहुंचे और फ्यूनरल में हिस्सा लिया। और इस बीच पुलिस ने अपने एक बयान में कहा है कि पूरी घाटी में जो है पूरा पीसफुल माहौल रहा दिन भर, लेकिन उसके बावजूद 6 जगहों पे सिटून पेल्टिंग के इंसिडेंट पेश आए हैं, और इस दौरान सोपोर में कुछ झड़पें हुई हैं युवाओं और पुलिस के सुरक्षा बलों के बीच। अलगाववादियों की हम बात करें तो यासीन मलिक को भी आज सुबह ही गिरफ्तार किया गया और उनको सेंट्रल जेल भेज दिया गया है, और हुर्रियत के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को कल से ही घर में नजरबंद रखा गया है।
इस बीच में राजनीतिक दलों की भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या?
अभी जो खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की एक बार फिर मांग की है, और उन्होंने जब अभी उपचुनाव हुए थे तो जब उन्होंने जीता था तो उसके बाद भी उन्होंने घाटी की जो बिगड़ती सूरत हाल है उनको देखते हुए केंद्र सरकार से मांग की थी कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।
जी, और हम आपसे नियंत्रण रेखा की स्थिति के बारे में भी जानना चाहेंगे।
सेना का जो कहना है, कल 6 चरमपंथी मारे गए और शुक्रवार को 2 चरमपंथी मारे गए, और आज भी नॉर्थ कश्मीर का जो कैरन सेक्टर है वहां भी गोलाबारी हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सेना के बीच, और जिसमें एक आर्मी का पोर्टर बताया जा रहा है, सेना ने कहा कि एक आर्मी पोर्टर मारा गया है और जिनकी बॉडी को बाद में उनके घरवालों को परिजनों के हवाले किया गया है, और इस बीच एक और दूसरा पोर्टर जो है वो घायल बताया जा रहा है।
जानकारी दे रहे थे माजिद जहांगीर। और हम आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की 12वीं की परीक्षा के नतीजों का ऐलान हो गया है। समाचार एजेंसी PTI ने बोर्ड अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी है कि इस साल कुल 82% छात्र पास हुए हैं। परीक्षा में 99.6% अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया है नोएडा की रक्षा गोपाल ने, दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ की भूमि रही हैं। मैंने कुछ देर पहले रक्षा गोपाल से बात की, सुनिए उनका क्या कहना है।
मैं बहुत खुश हूँ, बट मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, अभी भी थोड़ा शॉक में हूँ।
कल तक जब तक रिजल्ट नहीं आया था, आप उन 1,000,000 बच्चों में थी जिन्होंने इस बार CBSE की 12वीं की परीक्षा दी है, अब आप टॉपर हैं। कितना फर्क आ गया है?
ऐसा कुछ फर्क नहीं आया है, बस ये है कि मेरे इमोशन में थोड़ा फर्क है। मैं बहुत अभी खुश हूँ, कल बहुत नर्वस भी है, बट ऐसा कुछ फर्क नहीं है। हम लोग अभी भी स्टूडेंट्स हैं, हम सभी अभी भी इक्वली हैं, और सबको अभी कॉलेज के लिए सेम वे में अप्रोच करना है, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं।
आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी कामयाबी के लिए, किस किस का योगदान रहा?
मेरे पेरेंट्स का योगदान रहा है, जैसे मेरे मम्मी पापा ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इधर, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा इनकरेज किया है इस स्ट्रीम में। और स्कूल में मेरी चेयरपर्सन एमिटी नोएडा डॉक्टर मिस अमिता चौहान, फिर प्रिंसिपल मिस रेनू सिंह, और मेरे सारे सब्जेक्ट टीचर्स ने बहुत मेहनत की है और मुझे हमेशा इनकरेज किया है, मुझे हमेशा कभी भी प्रेशराइज नहीं किया उन्होंने मुझे।
पढ़ाई में तो आप टॉपर हैं ही, इसके अलावा भी आपके कई सारे इंटरेस्ट हैं।
मैं पियानो बजाती हूँ और मैंने अभी अभी उसका फाइनल एग्जाम पास किया था, और उसके अलावा मैं फ्रेंच सीखती हूँ, दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है वहाँ से, और मुझे पढ़ने का बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, नॉवेल्स।
फ्यूचर प्लान आपके क्या है, करियर आप किस तरफ अपना बनाना चाहती हैं?
कॉलेज में तो मुझे अभी पॉलिटिकल साइंस ही करना है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स को यूज करूँ किसी में, क्योंकि मुझे लैंग्वेजेस बहुत पसंद है, तो मैं उसको और अपने पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा कंबाइन करके कुछ करना पसंद करूंगी।
आप बाकी स्टूडेंट्स को किस तरह से एनकरेज करना चाहेंगी, कोई मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगी?
मैं बस उन्हें ये बोलूंगी कि वो अपने 12th को बस एक अपने जिंदगी का हिस्सा समझिए, कुछ ज्यादा बस फोकस रखिए, कॉन्सेंट्रेट करिए, मार्क्स नहीं आए तो बिल्कुल निराश नहीं होने की जरूरत है, अपने फ्यूचर पे फोकस करिए।
आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो के जरिए मन की बात की। प्रधानमंत्री ने 3 साल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सरकारों को जवाबदेह होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सकारात्मक आलोचना लोकतंत्र को मजबूत करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, सुनिए।
3 साल पूर्व आपने मुझे प्रधान सेवक का दायित्व दिया था, हर कसौटी पर इस 3 साल के कार्यकाल को कसा गया है, और मेरा स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में सरकारों को जवाबदेह होना चाहिए, जनता जनार्दन को अपने काम का हिसाब देना चाहिए, हमारे काम की गहराई से विवेचना की, कहीं सराहना हुई, कहीं समर्थन आया, कहीं कमियां निकाली गई। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट फीडबैक दिए हैं, जो त्रुटियां होती हैं, कमियां होती हैं, वो भी जब उजागर होती हैं तो उससे भी सुधार करने का अवसर मिलता है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लोकतंत्र को बल देता है। एक जागरूक राष्ट्र के लिए, एक चैतन्यपूर्ण राष्ट्र के लिए ये मंथन बहुत ही आवश्यक होता है।
और अब बात गीत संगीत की। वो गाते थे तो पंचम सुर लगाते थे, संगीत रचते थे तो बन जाता था नया ट्रेंड। संग संग गुनगुनाओगे मैं आज संगीत समीक्षक यतीन्द्र मिश्र बात कर रहे हैं पंचमदा यानी आरडी बर्मन की। राहुल देव बर्मन ऐसे महान संगीतकार थे जिनका रचा संगीत आज भी सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। इस खास सीरीज के प्रस्तुतकर्ता हैं मोहनलाल शर्मा।
संग संग गुनगुनाओगे, कला समीक्षक यतीन्द्र मिश्र के साथ।
आरडी बर्मन दोस्तों के बीच में पंचम के नाम से मशहूर संगीतकार के सदाबहार संगीत के बारे में आज हम अपने श्रोताओं से मुखातिब हैं। एक ऐसा हरफन मौला संगीतकार जिसकी लोकप्रियता उस समय ही अपनी ऊंचाई पर पहुंच गई थी जब उनके पिता दिग्गज संगीतकार एसडी बर्मन अपने करियर के शीर्ष पर थे। एक हद तक हम ये कह सकते हैं कि आरडी बर्मन उन बिरले संगीतकारों में रहे हैं जिन्होंने एक नया ट्रेंड सेट किया। उनके पहले मास्टर गुलाम हैदर ने खजांची में 1941 में यह काम किया था, जिसके तुरंत बाद शंकर जयकिशन बरसात में एक नया दौर लेकर आए। शंकर जयकिशन के बाद वही लीक ओपी नैयर रचते हैं जब वे नया दौर में अपना संगीत सिरजते हैं। और ठीक ओपी नैयर के बाद अगर कोई नाम हमारे जहन में उभरता है तो वो आरडी बर्मन का है। इस बात की पड़ताल के लिए उनकी तमाम फिल्मों को देखा जा सकता है, जो हर फिल्म संगीत की दृष्टि से एक सुनहरा अध्याय रचती है। फिर वो अमर प्रेम हो, बुड्ढा मिल गया, कारवां या हरे रामा हरे कृष्णा, हर जगह आरडी बर्मन की सिग्नेचर मौजूद है। आप जब आरडी बर्मन पे सुन रहे हैं तो आपको बहुत सारे और गीत भी याद आते होंगे जो आपकी पसंद की लिस्ट में सबसे आगे हैं। ऐसे कुछ गीतों को यहाँ याद करना चाहिए कि किस तरह पंचम दादा उनमें रंग भरते थे।
रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख तुम्हीं से चार हुई।
चढ़ती जवानी तेरी ताल बस ताली, तूने कदर ना जानी रामा।
कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे।
ऐसी तमाम और फिल्में हैं जो आरडी बर्मन के करियर में मील का पत्थर बनी हुई हैं, और उस हर फिल्म का गाना उतना ही आधुनिक और इनोवेटिव है जितना स्वयं आज नए तरीके के गीत बन रहे हैं। मिसाल के तौर पर 70 के दशक का एक गीत सुनते हैं जो आज भी उतना ही आधुनिक है जितना वह अपने जमाने में लोकप्रिय हुआ था।
दम मारो दम, मिट जाए हम, सुबह शाम हरे राम
आर डी बर्मन के बारे में एक मजेदार तथ्य ये भी है कि अपने युवा दिनों में उन्होंने तबला वादक ब्रजेन विश्वास के साथ तबला सीखा था और बाद में जब वे 50 के दशक में मुंबई आए तो उन्होंने सामता प्रसाद गुदई महाराज से भी तबले की बारीकियां सीखी थी। इसके अलावा कलकत्ता में रहकर उन्होंने उस्ताद अली अकबर खां से कुछ दिनों तक सरोद भी सीखा था, मगर सरोद सीखने से ज्यादा मन उनका उन लंबी बैठकों में लगता रहा जहां उस्ताद अली अकबर खां और पंडित रविशंकर आपस में सरोद और सितार की जुगलबंदियों का अभ्यास किया करते थे। जी हां, पंचम की दुनिया शास्त्रीय संगीत से इस कदर जुड़ी हुई है कि आपको शास्त्रीयता के मानक पर भी ये संगीतकार एक बड़ा फलक रचता हुआ नजर आता है। कुछ उदाहरणों को यहां पर इसी अर्थ में देखना चाहिए। आर डी बर्मन के जीवन को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि कैसे उनके जीवन में पाश्चात्य संगीत के संस्कार घर कर गए थे। पश्चिमी संस्कृति से अभिभूत दक्षिणी कलकत्ता के उस आभिजात्य समाज से जुड़े हुए आर डी बर्मन ने अपने संगीत संस्कार विकसित किए। रास बिहारी एवेन्यू कलकत्ता में मौजूद मेलोडी नाम की प्रसिद्ध रिकॉर्ड की दुकान से पंचम ने इस तरह के संगीत को सुनना और खरीदना शुरू किया था और बाद में ये केरसी लॉर्ड ही थे जिन्होंने बाकायदा पंचम को पाश्चात्य संगीत से परिचित कराया। उन्होंने आरडी को जैज, लैटिन अमेरिकन, यूरोपियन, क्यूबा का बिग बैंड और मध्य पूर्वी देशों के संगीत के अनेकों लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड दिए, जिससे आरडी बर्मन का वो चेहरा विकसित हो सका जिसे आज भी सदाबहार संगीत के प्रणेता के रूप में याद किया जाता है। कर्णप्रिय धुनों को पाश्चात्य सिम्फनीज के साथ सुंदर ढंग से मिलाने के फेर में आर डी बर्मन की एक दो धुनें यहाँ देखी जा सकती हैं, जिनमें उनका वह रूप अपने आप खिल सका है।
ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए।
जाने जा ढूंढता फिर रहा दिन मैं यहां से वहां।
आर डी बर्मन सबसे समर्पित संगीतकार के तौर पर याद किए जाते हैं, वो इस तरह कि उनकी टीम में हर समय लगभग 80-90 संगीतकार मौजूद रहते थे और उनमें कुछ ऐसे मशहूर लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अलग से अपना नाम पैदा किया है, जैसे केरसी लॉर्ड अकॉर्डियन और ड्रम के वादक के रूप में, दिलीप नायक लीड गिटार के लिए, मनोहारी सिंह इंग्लिश फ्लूट और तमाम और सारे लोग हैं जिनमें किशोर देसाई, लुई बैंग्स और माइक मचाडो के नाम लिए जा सकते हैं। एक खूबसूरत बात आर डी बर्मन के संदर्भ में ये देखने की है कि जिस तरह लता मंगेशकर की आवाज़ के लिए सी रामचंद्र, नौशाद और मदन मोहन ने संगीत बनाया है, उसी तरह आशा भोसले के लिए ओ पी नैयर और आर डी बर्मन मौजूद रहे हैं। तमाम सारे ऐसे खूबसूरत गीतों को हम आशा जी की आवाज़ में सुन सकते हैं जिनके धरातल पर हमेशा ही आर डी बर्मन का नाम लिखा हुआ है। जब मैं ये सारी बातें आपसे कर रहा हूँ तो आपको अनायास ही आशा भोसले की कुछ सदाबहार गीत जरूर याद आ रहे होंगे, एक दो को हम भी यहाँ सुनते हैं।
बड़ी पुरानी तूने मुझे पहचाना।
हालांकि आर डी बर्मन ऐसी प्रतिभा के मालिक थे जिन्होंने लता मंगेशकर जी के लिए भी उतने ही सुंदर और स्तरीय गीतों का सृजन किया। हम लता जी के करियर में भी कुछ ऐसे सुंदर नायाब मोतियों को चुन सकते हैं जो आर डी बर्मन की प्रतिभा से उभरे और जिनमें खासकर किशोर कुमार की आवाज़ समवयसी के रूप में मौजूद है। जी हाँ, मैं बात उस दौर की कर रहा हूँ जो 70 का दशक है और जिस समय किशोर कुमार और लता मंगेशकर के तमाम सारे सदाबहार युगल गीत आर डी बर्मन की देन रहे हैं।
कुछ तेज कदम गाए
आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम।
आर डी बर्मन इस बात के लिए भी हिंदी फिल्मों की दुनिया में याद किए जाएंगे कि कैसे उन्होंने शमी कपूर और राजेश खन्ना के करियर को अपने संगीत से परवान चढ़ाया, तो इस बात के लिए कि कैसे उन्होंने आशा भोसले जैसी पार्श्व गायिका को अपनी दूसरी पारी में सर्वोत्कृष्ट दिया जब वे नैयर युग से आगे बढ़ चुकी थी। ठीक इसी तरह वे अपने मित्र और फिल्म निर्देशक गीतकार गुलजार के लिए भी तमाम ऐसी नायाब धुनें लेकर आए जिससे गुलजार का संगीत और शायरी दोनों ही एक शिखर पा सके। आज भी गुलजार के गीतों का गुलदस्ता हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमें लुभाता रहा है। एक गीत से चलते चलते हम उन्हें अलविदा कह सकते हैं।
मेरा कुछ सामा तुम्हारे पास पड़ा है ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं।
ये कड़ी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। कार्यक्रम का संपादन किया था अजित सारथी ने और आदेश जी आ चुके हैं स्टूडियो में, तो जान लेते हैं संक्षेप में खेल की दुनिया का क्या है हाल।
जी वासल, अगर चर्चा की जाए भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे अभ्यास मैच की, तो आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के कारण उनकी पूरी टीम 38.4 ओवर में 189 रन पर ही ढेर हो गई। और थोड़ी देर पहले जीत के लिए 190 रनों का पीछा करते हुए भारत ने एक विकेट खोकर 91 रन बना लिए थे। अजिंक्य रहाणे केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन शिखर धवन 37 और विराट कोहली 36 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उधर फ्रेंच ओपन से एक बहुत ही दिलचस्प समाचार, रोला गैरा की लाल बजरी रास नहीं आई, शीर्ष वरीयता हासिल महिला एकल वर्ग में एंजेलिक कर्बर को और उन्हें गैर वरीयता हासिल रूस की एकेटेरिना मकारोवा ने पहले ही राउंड में 6-2 से हराकर बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त जी। और आखिर में सुन लेते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर संदीप सोनी से।
बीबीसी समाचार। भारतीय सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना घृणित युद्ध का सामना कर रही है जिसे नए तरीके से लड़ने की जरूरत है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा है कि अमेरिका सऊदी अरब का इस्तेमाल गाय की तरह कर रहा है। फिलीपींस के मरावी शहर में इस्लामी चरमपंथियों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 19 आम लोग मारे गए हैं। सेना शहर को चरमपंथियों से खदेड़ने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश में राजधानी ढाका स्थित सुप्रीम कोर्ट परिसर में न्याय की प्रतीक प्राचीन यूनान की देवी की मूर्ति को दोबारा स्थापित किया गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे तिलक राज भाटिया। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।